نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ایمان بالملائکہ عقیدے کی ایک بہت بڑی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ غیب کی وہ مخلوق جو آپ کی میری نگاہوں سے اوجھل ہے, ہم اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں مان جائیں. فرشتوں پر ایمان میرا آپ کا کیا ہے کہ فرشتے وہ ہیں, ویسے ہیں جیسے جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیے اور ہمیں قرآن پاک میں یا حدیث میں بتایا ہے. ظاہر ہے یہ چیز نہ تو کبھی سائنس سے ڈسکور ہوگی, کسی مائکروسکوپ, کسی ہبل, کسی چھوٹی بڑی گیجٹ کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی. تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہم لے آئیں اور بغیر اس میں اپنی کمی بیشی کیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اپنی زبان درازی سے بڑھا دیں یا کم کر دیں. ہاں, ہمارا ایمان فرشتوں کے بارے میں کیا ہے, تین چیزیں. پہلی بات ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور غیر معبود ہیں, مراد یہ کہ کریشن ہے اور ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی, سورۃ انبیاء 26. دوسری بات, فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, سورۃ تحریم آیت نمبر 6 ہے. اور ملائکہ کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا, اور یہ بات سورۃ مدثر 31 میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو اللہ کے لشکروں کی تعداد ہی نہیں جانتے. ہاں, ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر اور آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ ایک انچ برابر جگہ خالی نہیں ہے. حتیٰ کہ آسمانوں پر اتنے فرشتے ہیں کہ بعض دفعہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو چڑچڑاہٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں, پہلے آسمان, دوسرے پہ, تیسرے پہ. اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور انہیں اپنے احکامات کی اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی قوت دی ہے. اور فرشتوں کے پاس ول پاور نہیں ہے, اینجلز ڈونٹ ہیو چوائس, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے, بلٹ ان اطاعت ہے. آپ کمپیوٹر کی زبان لکھ لیں, ان کے ڈیٹا بیس میں اللہ نے ہر چیز پروگرام کر دیا, بس بٹن دباؤ تو کام شروع. چوائس نہیں ہے. آپ کی مشین کپڑے دھونے والی کبھی بھی برتن نہیں دھوئے گی کیونکہ اس کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے. تو فرشتوں کے پاس اختیار کی چیز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا لیے کیوں ضروری ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائیں. تو نمبر ایک, ایمان کی تکمیل ہے, یعنی فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ عقیدے کی بحث میں ہم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں نا, تو پھر ہمیں اس بات کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت, اس کی طاقت, اس کے کریشن پلان کو بھی ہم اللہ ہی کی بتائی ہوئی بات کی روشنی میں سمجھیں گے. اور پھر اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت آئے گی, قبر میں کیا ہوگا. یہ چیز ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی جب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کن کاموں کے لیے اللہ نے کن فرشتوں کو رکھا ہے. اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ان پر ایمان لانے کی جو اہمیت ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی. تو نمبر ایک, سب سے پہلی ذمہ داری فرشتوں کی کیا تھی, وہی پہنچانے کی. اور یہ کام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کروایا, سورہ شورا 192 سے 194 ریفرنس. اور یاد رکھیے, یہاں اپنے لیے جملہ لکھے, ہر نبی کے پاس وہی صرف جبرائیل لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کو دے دیا ہے. اور آج بھی بچے کی فیٹس یہ کہہ لیجئے, یا ماں کے پیٹ میں جو بچے کی روح ڈالی جاتی ہے, وہ بھی جبرائیل علیہ السلام ڈالتے ہیں. اسی لیے پھر ان کو روح الامین بھی کہتے ہیں اور روح بھی کہتے ہیں. پھر نمبر ٹو پوائنٹ دیکھیے, بارش برسانے کی ذمہ داری میکائیل علیہ السلام کی ہے, سورۃ بقرہ 98. نمبر تھری, سور پھونکنے کی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام کی ہے, ابن ماجہ 1357 اور ترمزی 3243. نمبر فور, روح قبض کرنے کا کام ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کا ہے. ان کی دو قسمیں, نمبر ایک رحمت کے فرشتے اور دوسرے عذاب کے فرشتے. اس کی دلیل ہے ترغیب و ترہیب 5221, مسند احمد 287 جلد 4, اور سورت سجدہ آیت نمبر 11 اور الانعام آیت نمبر 61. پھر پانچویں ذمہ داری انسانوں کے اعمال لکھنے کی, ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں, سورہ انفطار آیت 9 سے 12 اور مسلم 1230. پھر سکس ریسپانسبلٹی آف اینجلس کیا ہے, انسانوں کے آگے پیچھے سے, हर वक्त इनकी निगरानी और हिफाजत की जाए। इन फरिश्तों को मुआक्किबात कहते हैं। सूरत रात 11 में मौजूद है। मुआक्किबात, आकिबा क्या होता है? पीछे, अकब, आकाब, ठीक है। तो वो फरिश्ते जो आगे पीछे से हमारी हिफाजत करते हैं उनको मुआक्किबात कहते हैं। और आप खुद देखते हैं, आगे से तो हम खुद को बचा लेते हैं, पीछे से कौन बचाता है? कई दफ़ा बच्चा आप देखिए कि पीछे कोई चीज़ से टकराने वाला होता है लेकिन अल्लाह के हुक्म से रुक जाता है। यहाँ तक रिवायत में आता है कि एक बंदे की हिफाजत पे 10 फरिश्ते हैं, नाक के नथनों पे, कानों के पास, मुंह के आगे, तभी चारों तरफ जरासीम और इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं लेकिन अल्लाह ताला उसको बचा लेता है। कई दफ़ा बच्चे को चोट लगती है बिल्कुल इधर और माँ कहती हाय शुक्र है आँख बच गई, ये आपने मैंने नहीं बचाई। ये मौक़िबात उधर रोक लेते हैं कि इससे आगे बच्चे को चोट ना लगे। बहरहाल नंबर 7 देखिए, जन्नत और उनकी नेमतों की हिफाजत की जिम्मेदारी रिजवान और इनके साथियों की, यानी रिजवान नाम के जो फरिश्ते हैं बेसिकली बहुत मारूफ है कि वो क्या करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने क्या कहा। ये एक ब्रैकेट में लिखी है लेकिन इसका रेफरेंस किसी जगह मुझे तो नहीं मिला, लेकिन ये बात मारूफ है कुरान की किसी आयत में नहीं, लेकिन ये बात हमें नबी सल्लम की अहदीस से मिलती है कि जन्नत के फरिश्ते का नाम रिजवान है। फिर नेक्स्ट पे चलिए, जहन्नुम के दारोगा होने की जिम्मेदारी मालिक की है, यानी टेक केयर ऑफ हेल इज मालिक। और ये है बुखारी 3236 और जुखरुफ 77। फिर नेक्स्ट देखिए, जहन्नुम के अजाब की जिम्मेदारी मालिक के साथियों जबानिया, ये सब कुरान में लफ्ज़ मिल जाएंगे अगर इन आयतों को जाके पढ़ेंगे, जबानिया। और इनकी तादाद 19 है, 19 सूरत मुद्दसर आयत 30 और 31 है। इसी पे तो अबू जहल ने कहा था ना, 17 से तो मैं ही लिमट जाऊंगा और बाकियों से तुम निबट जाना, तो अल्लाह ताला ने उसको तकब्बुर की सजा दी। बहरहाल नेक्स्ट पे चलिएगा, कब्र में सवाल जवाब की जिम्मेदारी मुनकर और नकीर की है, अबू दाऊद 4753 और तिर्मिजी 1071 और 70 जो भी है। अगर एक आधा भी रेफरेंस लिख लेंगे तो भी काफ़ी होता है, जो हमने लिख के दिए हैं वो भी ठीक है, एक्स्ट्रा अपनी मर्जी है आपकी, अब लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि कुछ फरिश्तों के पास अर्श उठाने की जिम्मेदारी है, हामिलीने अर्श कहते हैं इनको। ये बात सूरत गाफिर आयत 7 और अलहाका 17 में है। और इनमें से बाज़ को करूबी, काफ रा, रा पे शद डाल दीजिए, वाव और बाया, करूबी भी कहा जाता है, यानी आप कह लीजिए हामिलीने अर्श फरिश्ते उनका नाम करूबी भी है, ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी खवातीन के रहमों पर है, मदर्स वूम, बेबी माँ के पेट में होता है, कोई उस हमल की हिफाजत नहीं कर सकता। और ये क्या करते हैं? बच्चे की तकदीर लिखवाई जाती है, इसे फरिश्ता तकदीर कहते हैं। बुखारी 318 और मुस्लिम 2646 नंबर है इसका। फिर इसी तरह से कुछ फरिश्तों के पास बैते मामूर में दाखिल होने की जिम्मेदारी है, हर रोज़ इसमें 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और क़यामत तक दोबारा इनकी बारी नहीं आएगी। ये बात बुखारी 3207 और मुस्लिम 164 में मौजूद है। यानी दुनिया में इतने फरिश्ते हैं कि जिस तरह हम इंसान जो हैं और ख़ासतौर पर मुसलमान खाना काबा में जाने की ख्वाहिश रखते हैं ना, इसी काबे के ऊपर बिल्कुल बैतुल मामूर है, ऊपर एक घर है फरिश्तों के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। और एवरी डे 70,000, हमें तो यहाँ चले कोटा मिल मिला ही जाएगा लेकिन उनको वहाँ दोबारा जाने की कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। वजह क्या है? क्योंकि उनके पास लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ फरिश्तों के पास जिम्मेदारी है जिक्र की मजलिसों को तलाश करने की, जैसी कि ये मजलिस है आपकी, और अल्लाह करे कि यहाँ भी फरिश्ते ढूंढते हुए पहुँच चुके हों और इस जगह को ढांप लिया हो। इन फरिश्तों को कहते हैं मलाइकतुस सैयारा। सैयारा आपको हदीस याद है किसी को जिसमें ये लफ्ज़ है? ढूंढते हुए आते हैं और फिर उस जगह को ढांप लेते हैं, फिर ऊपर तक जाते हैं, फिर उस महफिल के ख़त्म होने पर अल्लाह के पास जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह को ख़ुद सब पता है कि वो क्या कर रहे थे। कितनी मारूफ हदीस है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत मांग रहे थे, कहा उन्होंने ये देखा है? कहा देखी तो नहीं है, हाँ तेरी किताब में से पढ़कर उनको यकीन है। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम गवाह रहना, मैंने उनको जन्नत दे दी और जहन्नुम से बचा लिया। तो अल्लाह ने सिर्फ आपकी इन महफिलों की जगह ढूंढने पर कुछ फरिश्तों को लगाया हुआ है। कितने ही महरूम हैं वो लोग जो जगह मालूम भी होने और करीब होने के बावजूद ऐसी जगहों से फ़ायदा ना उठा सके। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी लफ्ज़ फ़रिश्ता आता है ना, तो हम फ़ौरन बहुत जिस तरह उसके बारे में फील करने लगते हो, हाउ ब्लेस्ड दे आर, कितने लकी कहते हैं, लकी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब ज़िंदगी में किसी नेकी का मौका मिले ना, तो फिर उससे फ़ायदा उठाएं। बिलीव मी, दूर वाले रश्क करते हैं उन लोगों पे, और बास लोग खुद पे रश्क नहीं करते। आप हमेशा इस पे दो नफिल पढ़ा करें, नफिल पढ़ें या क्या करें, शुक्राने का सजदा करें कि आपको एक चीज़ ऑफर हुई और आपने ले ली। तो हमेशा याद रखें कि स्टूडेंट्स साइलेंट पार्टनर होता है, स्टूडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इनसे महरूम ना करें। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है कि जब एक मोमिन अपने मोमिन भाई की गैर मौजूदगी में दुआ करे, तो वो दुआ करें कि या अल्लाह कबूल फरमा और दुआ करने वाले को भी अता फरमा। ये मुस्लिम की रिवायत है 826। थोड़ा सा इन हेडिंग्स को सुनकर आपको हदीसें याद आ रही हैं, लेकिन दिल तो चाह रहा है हर बात पे हदीस सुनाऊं। ये जो हदीस का नंबर है आप जाके खुद पढ़ लें, इससे भी आपको अंदाजा होगा। लेकिन वाकई आप किसी के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ता जवाब में कहता है अल्लाह इसको भी वही दे, तो ये कितनी बड़ी एक खैर है जो आप दूसरों के लिए दुआ करके समेटते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी नमाज जुमा के लिए आने वालों के नाम लिखना है, साइन इन और साइन आउट। अच्छा, साइन इन साइन आउट कौन करेगा? जो सबसे पहले आएगा और सबसे आखिर में जाएगा। ये बुखारी की रिवायत है 929 और मुस्लिम 85 है। फिर एक जिम्मेदारी क्या है, पहाड़ों की जिम्मेदारी, पहाड़ी मामलात को करना, और वो किन की है, मलकुल जिबाल। बुखारी 3237, मुस्लिम 4653 और 1795। याद है आपको वो हदीस के जब ताइफ वालों ने नबी सल्लम को सताया, पहाड़ों का फरिश्ता, वो ये फरिश्ता आया था कि अल्लाह के नबी आप इजाज़त दें तो मैं दोनों पहाड़ों को ऐसे कुचल दूं, यानी ऐसे दबाऊं कि ये ताइफ वाले सारे बीच में कुचल जाएं। तो आपने क्या कहा था कि नहीं, क्या पता इनकी नस्लों में कोई ईमान वाला हो। और वाकई मोहम्मद बिन कासिम वहां से उठे और आज फतह करके हमें आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने के काबिल किया। तो ये वही मलकुल जिबाल है। यहाँ से आप देख रहे हैं अल्लाह का प्लानिंग, अल्लाह का काम करने का तरीका, यानी मुझे तो ये पूरी मैनेजमेंट स्किल्स दिख रही हैं। कोई एस्पेक्ट आपके स्कूल का, आपके इदारे का, आपके मुल्क का अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। सिर्फ हम हजरत उमर को फॉलो करने लग जाएं, मुल्की सतह पे जो हमारे मुल्क के निज़ाम है, और इसी तरह हर मस्जिद और इदारे की मैनेजमेंट छोटे छोटे लेवल, और इवन हम अपने घरों में वो सब ले आए, तो हम सब सीधे हो जाएं। आज हम डिफोकस्ड लोग हैं, हम बिल्कुल अपनी जगह से हटे हुए हैं, और अल्लाह ताला हमें अपनी जगह पे कायम रहने वाला बना दे। फिर नेक्स्ट देखिए, अगली चीज़, कुछ फरिश्ते अहले जन्नत के खादिम होंगे। इनकी तादाद अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। ये सूरत रात 23 और 24 आयत है, देख लीजिएगा जाके। फिर नेक्स्ट क्या है, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी है अपने मुकाम पर सफ़े बांध कर खड़े रहें, इनको असाफात कहते हैं, और इनकी जिम्मेदारी है कि सफ़ बांध कर खड़े रहें, रुकू करें और सजदा करें। सूरत साफ़ात की पहली आयत। अल्लाह करे हमारी सफ़ें भी सीधी हो जाएं। जिस दिन उम्मत की सफ़ें सीधी हो गई ना, उस दिन दिल भी सीधे होंगे। आज दिलों में बुग़्ज़ कीने सिर्फ इसीलिए हैं कि हम साथ जुड़ के नहीं खड़े होते। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी है कि वो डांटें, इनको अज़्ज़ाजिरात कहते हैं, सूरह साफ़ात आयत नंबर 2। नेक्स्ट, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी है कि वो जान को सख्ती से निकाल लें, इनको अन्नाज़ियात कहा गया, ये भी सूरत नाज़ियात की पहली आयत। नज़ा से खींचना, यानी इस तरह से किसी चीज़ के अंदर से किसी चीज़ को निकालना कि पूरी निकल जाए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी है कि वो जान को आसानी से निकालें, इनको अन्नाशितात कहा गया, सूरत नाज़ियात की आयत 2। किसकी जान सख्ती से निकलती है? काफिर की, फाजिर की। क्यों भला? अटैच हुई होती है ना दुनिया से, जैसे च्युइंगम लग जाए बालों में और उसको सूखने दें और फिर खींचें तो जड़ समेत बाल भी साथ आ जाता है। तो मोमिन की जान इतने आराम से क्यों निकलती है? आधी से ज़्यादा तो वो पहले ही दे चुका होता है। मोमिन इस दुनिया से अटैच नहीं होता, इस तरह चिपकी नहीं होती दुनिया उसको। नेक्स्ट देखिए, कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी है कि वो तकसीम कार करें, यानी जिम्मेदारियाँ बांटें, कामों को बांटें, इनको मुकस्सिमात कहा गया, तकसीम करने वाले, सूरत ज़ारियात आयत नंबर 4। नेक्स्ट है कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी कि वो इंतज़ाम करें, मैनेजमेंट, इनको मुदब्बिरात यानी इंतज़ाम करने वाले कहा गया, सूरत नाज़ियात आयत नंबर 5। और फरिश्तों की ज़िम्मेदारियों से हमें ये पता चलता है कि सारा निज़ाम फरिश्तों के सुपुर्द है। मुस्नद अहमद 173 और अम्बिया 1920। आप अपनी समझ के लिए लिख सकते हैं, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। और वो क्या है कि जैसे दुनिया में हर बादशाह अपने काम मुख्तलिफ महकमे वालों के ज़िम्मे लगा देता है ना, तो फरिश्ते अल्लाह की वर्किंग फोर्स हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को किस तरीके से रखते हैं ये आपको पता चला। 3 सेकंड सोचिए, अभी फरिश्तों के बारे में ये मालूमात सुन के क्या महसूस हुआ आपको? अल्लाह सुबहाना ताला की मोहब्बत के उसने हमारे लिए कितने इंतजामात किए हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है पढ़ते हुए कि हम दुनिया में कुछ लोगों से बड़े मशहूर होते हैं ना, बहुत सिस्टमेटिक। यानी मेरे जहन में एक लफ्ज़ आया, सिस्टमेटिक। बिलीव मी, अल्लाह ने हड़बूंग में नहीं दुनिया बनाई। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जैसे अल्लाह हमें देख रहा है ना कि हम अच्छे काम करते हैं कि नहीं, तो अल्लाह ताला ने भी अच्छे काम किए हैं। चलिए अब आगे एक तवील टॉपिक और है, फरिश्तों की सिफात क्या हैं, यानी क्या फरिश्तों में कुछ मखसूस किस्म की सिफात हैं। मीन के जैसे इंसानों में मुख्तलिफ हमारी सिफात है ना, कोई बहुत जनरस है, कोई स्टिंजी है, कोई बहादुर है, कोई नहीं है, इस तरह के हमारे साथ मामले हैं ना, तो फरिश्तों में क्या डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो याद रखिए कि फरिश्तों की तख्लीक नूर से हुई है, वो बशरी ज़रूरियात से आज़ाद है। मसलन खाना पीना सोना जागना, शौहर बीवी औलाद की ज़रूरत, ये सब कुछ फरिश्तों को नहीं है। फिर गुनाह करने की ताकत भी नहीं है, ये भी जुमला लिख लें, फरिश्तों में गुनाह करने की ताकत नहीं है। इसके बावजूद फरिश्तों की कुछ डिफरेंट सिफात हैं। हम 15 सिफात पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नंबर 14 और नंबर 15 के आगे फिर 10-10 तकरीबन पॉइंट्स हैं। सबसे पहली सिफत फरिश्तों की है कि फरिश्ते हया करते हैं। अल्लाह हमें भी हया दे दे। और इसकी दलील जाके पढ़िएगा सही मुस्लिम की रिवायत 6209 में। नेक्स्ट, फरिश्तों में अजियत का एहसास होता है, यानी फरिश्तों को अजियत दी जाती है जब, तो होता है। रेफरेंस है सही मुस्लिम 1248। नेक्स्ट पे चलिए, फरिश्ते नफरत भी करते हैं, मसलन कुत्ते और तस्वीर से, बुखारी की रिवायत 4002 है। नेक्स्ट, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, सही मुस्लिम 6705। नेक्स्ट, फरिश्ते तकब्बुर नहीं करते, नहल 49। नेक्स्ट, फरिश्ते अल्लाह का खौफ रखते हैं, नहल 50, अम्बिया 28। हर बात पे आप भी दुआ करें अपने लिए, अल्लाह हमें भी दे दे। फरिश्ते हया करते हैं, अल्लाह हमें भी हया दे दे। फरिश्तों को भी गंदी चीज़ों से कराहत होती है, हमें भी हो जाए। फरिश्ते मोहब्बत करते हैं तो हम भी करें, वो तकब्बुर नहीं करते तो हम भी ना करें, वो अल्लाह का खौफ रखते हैं तो हम भी अल्लाह का खौफ रखें। नेक्स्ट थिंग लिखिएगा, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, सूरह तहरीम आयत 6, अम्बिया 26 और 27। फिर नेक्स्ट, फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, सूरह अल अम्बिया आयत 19। फिर नेक्स्ट, फरिश्ते अल्लाह ताला से नेक बंदों के हक में मगफरत तलब करते हैं, सूरह गाफिर आयत 7। आयत याद आई है किसी को? इतनी इमोशनल आयत है। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया है कि आपकी मेरी ज़िंदगी के जो गुनाह हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, बस वो अल्लाह से बैठ के माफ़ियाँ मांगते रहते हैं, लिल्लज़ीना आमनू। और आपको अगर आयत पूरी याद आ गई है तो आपके बच्चों के लिए भी मांगते हैं कि अल्लाह इनकी औलादों को जन्नत में इनके साथ मिला देना। ये सूरह गाफिर की इतना खूबसूरत मौका है कि बावजूद इसके कि दौरे कुरान में हम उस वक्त बहुत टाइट जगह पे होते हैं पारे के अतबार से, लेकिन हमेशा मैं वहाँ जाकर इस पे चंद बातें ज़रूर करती हूँ कि कभी आपने किसी को कहा कि मेरे लिए दुआएं करो, लोग तो यही करते रहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, किसी को दावत दे ना, क्लास हो रही है, हाँ ये वैसे आप हमें दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, दर्स हो रहा है उधर, आप भी आइएगा, ये भी होगा वो होगा, हाँ आना तो मुश्किल, लेकिन वैसे आप हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यकीन करें, दुआएं कह के नहीं मांगी जाती, दुआएं लीजिए, दुआ लीजिए, दुआ दीजिए, दुआ कीजिए। मेरे मुँह से इधर बुलवाया अल्लाह ने, मैंने पहले सोच के नहीं बोला था, और यहीं बोलती हूँ जो अल्लाह ही बुलवाता है। और वो मैंने क्या बोला था, दिया नहीं जाता, लगाया जाता है। जो चीज़ अपनी होती है ना, उस पर देते नहीं है, वो दिया तो किसी को आपने, किसी को $20 का गिफ्ट दिया होगा, आपको आज भी याद है वो फलां मौके पे उसके बेटे को $20 का गिफ्ट दिया था। अपने बच्चों पर नहीं देते, उनको लगाते हैं। दीन के साथ दिए का ना मामला करें, लिए का करें, लगाने का। ये हमने लगाना, ये वक्त हम दे नहीं रहे, लगा रहे हैं। और मैं कितनी दफा अपने दिन रात के मामूलात पे इसको सोच रही हूँ कि फिर मैं कहती हूँ अल्लाह जी मैं दे नहीं रही, मैं लगा रही हूँ, मुझसे और लगवा ले। और इसमें माल नहीं है सिर्फ, माल तो सबसे छोटी चीज है जो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, वो तो मैल है, हाथों का मैल, माला या मील उमैलन, ये तो बहुत छोटी चीज है। असल जज्बे, शौक, वक्त ये दीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कितना मिलेगा। तो बात सारी की है फरिश्तों की दुआओं पे, कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो फरिश्तों की दुआएं लेते हैं, मासूम अनिल खता। तो अल्लाह ताला हमें फरिश्तों की दुआएं लेने वाला बना दे। नेक्स्ट, चलिए, फरिश्ते इल्म भी रखते हैं आपकी तरह माशाल्लाह, उनको भी इल्म लेने का बड़ा शौक है। सूरत नजम आयत नंबर 5 है इसकी दलील। नेक्स्ट, फरिश्ते मुअज्जज़ और पाकबाज़ भी हैं, यानी फरिश्तों में इज्जत का एहसास भी कह लीजिए और बाकी भी चीज़ें मौजूद हैं। और दूसरी बात यह कि पाक रहते हैं, इसकी दलील सूरत अब्बस 15:16 और अलम्बिया 26। नेक्स्ट फरिश्ते, और नेक्स्ट फरिश्ते तस्बीह करते हैं, सब्बहलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और युसब्बिहु, जितनी मुसब्बिहात की सूरतें हैं उसमें, लेकिन ख़ास तौर पे ये बात के फरिश्ते तस्बीह करते हैं, ये सूरत अलम्बिया आयत 20 में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फरिश्ते दोस्ती करते हैं, अल्लाह अकबर, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया, ये किनको बोलते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया, सूरत फुस्सिलात आयत नंबर 30 और 31। अब मेरे दिल में आ रहा है कि कभी एक कोर्स हम एक साल का रखें, यही सेम चीज़, ये उसका मिनिएचर, और हर आयत को फिर पढ़ें कुरान खोल कर, वो क्या कोर्स होगा। आप सोचें कि आपकी आंखें देखेंगी कि कुरान में कहाँ क्या रखा हुआ है, सबीलुल जन्ना, यहाँ वहाँ जिधर भी किसी ने कहीं भी कुरान का कोर्स पढ़ा है, ये जो कुछ आपको मैं बता रही हूँ ये सारा पढ़ चुके हैं, ये आयतें आई थी ना पढ़ते हुए, और जितनी हदीसें अभी तक बताई मैं पूरे शरह सदर से कह सकती हूँ सबीलुल जन्ना में ऑलमोस्ट 90% 98% कोट की हुई है मैंने, कोई नई बात नहीं। लेकिन वही बात है ना, चैनलाइज हो रहा है, जैसे एक है ढेर ला के शॉपिंग का रख दिया घर में थैले, पता ही नहीं होता है क्या, और एक है आप उसकी डब्बों में अलमारियों में, जिससे वो घर सेट होता है, और मेरा जिस दिन सेट होता है उस दिन मुझे फिर जाना पड़ता है, इसलिए फिर मैं सेट ही नहीं करती कि अब जो भी होगा वो होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं ना कि आप कहीं छुट्टियों में जाने को कहते हैं ना रिफ्रेशमेंट, या कहीं जाना अच्छा लगता है ना, छुट्टियां कहीं चलते हैं, रिफ्रेशमेंट, मेरे लिए रिफ्रेशमेंट है कि मुझे कहीं ना जाना पड़े और मैं अपने घर में जब अलमारी खोलूं और चीज़ निकल आए। यानी एक बात बता रही हूँ कि चेंज कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये पढ़ते पढ़ाते मुझे ऐसे लग रहा है छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इस्लाम के, और हर चीज़ उसमें जा रही है, उसमें जब जरूरत पड़ेगी ड्रॉ खोला निकाल ली। और आपने अगर पहले ये ना किया होता कुरान का कोर्स, आप बिल्कुल इंजॉय ना करते इतने फास्ट पेस में। तो भी कोई आप किसी गेस्ट को ले आए, कल उठ के चला जाएगा, वो कहेगा ये बहुत फास्ट बोल रही थी, इतना कुछ लिखा है, टू मच हो गया, नहीं रहेंगे वो आपके साथ, वजह कि बेस नहीं बनी हुई। तो अल्लाह करे कि हम मुख्तलिफ तरीके से इल्म को सीखते रहें। याद रखें कि इल्म की दो आंखें होती हैं, एक आगे होती है एक पीछे होती है। जिनके पास एक आंख का इल्म है ना, वो काना इल्म होता है, तासुब से भरा हुआ, जो पढ़ लिया इससे आगे और ज़रूरत नहीं, जो मेरे उस्ताद ने बता दिया वही सबसे अच्छा है, या जो मुझे बात समझ आ गई इससे अलावा कुछ नहीं है, ऐसे लोग कभी ग्रो नहीं करते। छोटी मिसाल दूं, हालांकि वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता, मसा आप देखिए कि मिरर है ये बिलफर्ज, वैसे इसमें है नहीं है, देख लीजिए। अब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे अपना फेस दिखेगा ना, लेकिन अगर मुझे पीछे देखना है तो मैं क्या करूँगी, ये मैं पीछे एक और मिरर रखूँगी तो देखूँगी ना। तो जैसे आगे की चीज़ें एक मिरर से दिखती हैं, पीछे की नहीं दिखती, इसी तरह दो रुख से चीज़ को देखने से हमारे अपने अंदर तकाबुल पैदा होता है। हमने दुनिया का इल्म सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, दीन नहीं सीखा हुआ, अंधे ब्लाइंड है, और सिर्फ दीन के नाम पे दीन सीखते थे, दुनिया नहीं आप लेंगे, या ऐसे इदारों में जैसे मदरसास में, और जिस तरह से बच्चों को फुल टाइम माशाल्लाह इतना गहरा इल्म दिया जाता है दीन का, लेकिन दुनिया में नहीं चल पाते। तो हमेशा याद रखिए बेहतरीन तरीका क्या है, दीन का इल्म और दुनिया का इल्म साथ साथ, और अल्लाह ताला हमें इसमें बढ़ने वाला बना दे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, सूरत अल अहज़ाब 43, बड़ी मशहूर है, जुम्मे को अक्सर उसकी स्लाइडें लोग भेजते हैं, मलाइकता युसल्लूना अला नबी, तो सल्ला युसल्ली तस्लिया, रहमत की दुआ करने को कहते हैं, आयत 43 सूरत अल अहज़ाब। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि ये जो बात की है ना, मैंने फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, ये किस पॉइंट पे पहुंचे हैं आप बताइए। 14, शाबाश। अब आप देख रहे हैं कि आपके 14 के बाद शीट में कुछ नहीं नंबर डला हुआ। अब ये सब पॉइंट्स लिखेंगे आप, किन के फरिश्ते किन पर रहमत की दुआ करते हैं। और अगर आप इसको डिटेल में लें ना, तो हमने एक बुक पढ़ी थी, आमाल ऐसे कि फरिश्ते उतरे, ये सारी हदीसें जब बोल रही हूँ ये सारी उसमें से हैं। आप लोग बाद में लेना चाहें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ, पॉइंट 14 में फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, ये बात सूरत अहज़ाब 43 से पता लगी। अब क्वेश्चन ये किन के लिए करते हैं, ये आप लिख लें साथ ही इसी पे साइड पे, किन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह की रहमत से, किन की बात है, लोगों को भलाई की तालीम देने वालों के लिए। तिर्मिज़ी 2685 और जामे सगीर भी है 1838। दिल की गहराई से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहीं भी अंसारुल्लाह, आप कुरान टीचर हैं, आप हदीस टीचर हैं, आप मत कहिए कि ये बात सिर्फ उस्तादों के लिए है। उस्ताद तो एक फ्रंट केस होता है, वल्लाही उसके पीछे जितनी मशीनरी होती है वो सारी इसमें आती है। इसमें वो भी लोग हैं इस वक्त जो बेबी सिटिंग में बैठे आपकी मदद कर रहे हैं, और इसमें वो सारे भी लोग हैं जो छोटे से लेके बड़े कामों में काम करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, अल्लाह ताला हम सबको भलाई की तालीम देने वालों में किसी न किसी तरह डाल दे। उस्ताद होना तो बहुत खतरनाक है वल्लाही। मैं अभी इस वक्त इतनी फोकस्ड हूँ इन बातों को बताते हुए आपको, क्योंकि मैं गलत बोल दूंगी तो कितने हजारों लाखों लोगों तक गलत बात चली जाएगी। तो ये खतरे वाली जगह है। जो हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं वो तो अपनी नेकी का अजर लेके चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें गलतियों से पाक तालीम देने वाला बनाए। नेक्स्ट चलिए, फरिश्ते किन पर रहमत की दुआएं करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वालों के लिए। तिर्मिजी 775 नंबर की हदीस है। नेक्स्ट, बाजमात नमाज का इंतजार करने वालों के लिए, बुखारी 647। तो अगली चीज नोट करिएगा, किसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, ये हदीस अब आपने किसको सुनानी है, अपने मर्दों को। और मर्दों में शौहर भी मर्द ही होता है, बेटे तो होते ही हैं, हैं? अगली सफ़ों में नमाज अदा करने वालों के लिए। ये अबू दाऊद की रिवायत है 664। दोनों बातें, बाजमात नमाज का इंतज़ार और अगली सफ़ों। देखिए बहुत सारों के शौहर तो वैसे ही आदि इंतज़ार करने के, ऐसे ही है ना, बेगम का इंतज़ार करने से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि नमाज का इंतज़ार किया जाए। तो ये दोनों हदीसें आपने घर के मर्दों को सुनानी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए, सफ़ों में मिलकर खड़े होने वालों के लिए, इब्ने माजा 995 नंबर की रिवायत है। यानी सफ़ों में रखना नहीं डालना चाहिए, याद रखिए। ये तो नमाज की सफ़ों की बात है ना, दीन और इस्लाम की सफ़ों में भी रखने नहीं डालने चाहिए। ये तफरकाबाजी, ये गिरोहबंदी, ये तासुब, ये सारी आज के दौर की यही रखना अंदाजियाँ हैं जिससे बरकत चलेगी दीन की। तो अल्लाह करे कि हमारी नमाजों की सफ़ें भी एक हों और हमारे दीन की सफ़ें भी एक हों, और हम वो काम जो छोटी छोटी कोशिशों से होता है उसको बड़े बड़े कामों में बदल सकें। शर्त इसमें एक ही है कि इंसान इस काम को करते वक्त अपनी ज़ात से ज़्यादा दीन के नफ़े को सामने रख सके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगली चीज़ भी बड़ी खूबसूरत है, और वो क्या है, सफ़ की दाईं जानिब खड़े होने वालों के लिए। अबू दाऊद 676। और ये चीज़ तो मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं कि जहाँ से लेडी साइड में से मेन साइड दिखती है। अमेरिका में तो 98% मस्जिद ऐसे ही है ना, स्क्रीन लगी होती है और आपको मेन साइड दिखती है। अगर कभी ऐसा इत्तफाक हो और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने का दिल चाहे कि मेरे घर वाले किधर खड़े हैं, तो हमेशा मैं राइट साइड पे देखती हूँ, पहली सफ में। मुझे किसी और मर्द को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे बैक ही दिखती है, बैठे हुए दिखे इंसान। लेकिन अपने बच्चों को ये सिखाएं नेकियों में भी मजीद नेकी, तो राइट साइड पे बैठने वाले को ज्यादा अजर है लेफ्ट साइड की निस्बत। ये भी बात, जहां से आपको एक साइड इश्यू मिल गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नमाज से फारिग होने के बाद नमाज की जगह बैठने वालों के लिए, बुखारी 659। कौन नमाज से फारिग होकर वहां बैठा रहेगा, जिसको मजा आ रहा है, जो इंजॉय कर रहा है। जैसे हमारा उठने को दिल ही नहीं करता, दोस्तों में बैठे हों फिर कहते हैं और थोड़ी देर बैठ जाएं, और बच्चों को लेना है आप भागते हैं, फिर वो रास्ते में जो गाड़ियां चलाते होंगे अल्लाह की बना, जहां दिल लगा होता है वहां से उठने को दिल नहीं करता ना। तो दुआ करें हमारे मर्दों के दिल मस्जिदों में नमाजों में ही लग जाएं, वहां बैठकर एंजॉय करें। फिर नेक्स्ट देखिए, सहरी खाकर रोजा रखने वालों के लिए, हदीस पड़ी हुई है, सहरी खानी चाहिए क्योंकि इससे फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं। और इसकी दलील है सही जामे 1844 और असहीहा 1654 नंबर की हदीस है।